पंद्रह एक 1966 और इसी तारीख को 67 में रिपीट हुआ। पहले पेज की छठी लाइन में बात चल रही थी, ये जो कास्केड का चित्र है, चित्र कहो मूर्ति कहो यादगार मूर्ति है ना, पहली यादगार कब की है? कास्केड का चित्र जो प्लास्टिक का बना हुआ है, जिसमें बीच में ज्योति बिंदु दिखाई देता है, इसकी पहली यादगार कब बनी? 'सोमनाथ मंदिर भूल गया है, इसकी पहली यादगार भक्ति मार्ग के द्वैतवादी द्वापर युग के आदि में बनी थी। कोई भी दिल्ली वाले, कलकत्ते वाले, जो भी अच्छे अच्छे धर्मी लोग हैं यहाँ या वहाँ, उनको ये कास्केड सौगात में देनी चाहिए। अभी तक कौन सा चित्र सौगात में देने के लिए बोलते थे? है लक्ष्मी नारायण का चित्र, जिसमें त्रिमूर्ति का चित्र भी था, तो रचयिता और रचना दोनों का चित्र था लक्ष्मी नारायण के चित्र में, वो सौगात में देने के लिए बोलते थे। अभी क्या नई बात बोली? कास्केड का चित्र कहो या मूर्ति कहो, पहले शास्त्र बने हैं या चित्रकारी हुई है, मूर्तियां बनी है? है पहले चित्रकारी हुई है, उनमें भी पहला चित्र कौन सा बना भक्ति मार्ग में? कौन से चित्र की पूजा शुरू हुई? है सोमनाथ के मंदिर में शिवलिंग दिखाया गया, लाल पत्थर के लिंग में चमकता हुआ हीरा दिखाया गया, वही यादगार। अभी शिव जयंती आती है, तो सबको ये चित्र सौगात में देना अच्छा रहेगा। है अभी तक शिव जयंती नहीं आ रही थी, है अभी तक ब्राह्मणों की दुनिया में शिव जयंती नहीं मनाई जा रही थी, उसमें त्रिमूर्ति लक्ष्मी नारायण आदि का चित्र देने के लिए बोला सौगात में। अभी ये कास्केट का चित्र देने के लिए क्यों बोल रहे हैं? है? ये भी बोला ऐसे नहीं है कि कोई काम उनको देने का है। क्या साधारण आत्माओं को देने की बात नहीं है, जो असाधारण असाधारण समझू सयान्य है उनको ये चित्र देना है। ये कलकत्ता है, कलकत्ते की क्या खासियत बताई? कलकत्ता है, कल है क्लेश कट्टा करने वाला। उसमें भी जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े मनुष्य रहते हैं उनको देने का है। किसको हिंदी में दो, किसको वो सौगात अंग्रेजी भाषा में दो, ये सौगात शिव जयंती पर देना शोभेगी। कब? आर्टिफिशियल शिव जयंती पर देना ज्यादा शोभेगी या रियल शिव जयंती पर देना ज्यादा शोभेगी? रियल शिव जयंती क्या होती है? अभी तक ब्राह्मणों की दुनिया में आर्टिफिशियल मनाई जाती थी क्या? शिव जयंती, जयंती साकार की मनाई जाती है या निराकार की मनाई जाती है? तो अभी तक है जो शिव जयंती मनाते थे वो तो किसकी जयंती मनाते थे? मनाने वालों की बुद्धि में क्या रहता था? है निराकार की। जय जयकार निराकार आत्मा की होती है या निराकार आत्मा गर्भ से जन्म लेकर बाहर आती है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है, तब ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। भक्ति मार्ग में क्या प्रचलन है? है ये भक्ति मार्ग में जो परंपराएं निभाई जा रही हैं, ये परंपराएं पहले पहले कहाँ से शुरू हुई? संगम युग से। संगम युग में किसने शुरू की? है शिव बाबा ने। अरे शिव बाबा की जयंती और शिव बाबा ही ढोल नगाड़े बजाएगा? है बाबा तो ये ब्रह्मा मुख से जो ब्रह्म वाक्य बोले जा रहे हैं 15166 की मुरली में, उनमें बच्चों को डायरेक्शन दिया है कि जो बड़े बड़े शहर हैं, खासकर दिल्ली है, जो स्थापनाकारी है और कलकत्ता है आवाज फैलाने में नंबर वन, तो इन शहरों में बड़े बड़े लोगों को देना चाहिए, कामन लोगों को नहीं। और ये खास सौगात कब देनी है, है? शिव जयंती पर देनी है। शिव जयंती तो 80 साल से मनाते चले आ रहे, तो अभी ये खास सौगात देने की क्या बात आ गई है? बाबा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होने वाला है, हो गया, होने वाला है। तो देखो ऐसे टाइम पर कोई को समझाने का भी चांस मिले तो अच्छा है।
अरे
अभी तक कहते थे त्रिमूर्ति पर बाप का परिचय देना चाहिए, बाप का परिचय कोई देते ही नहीं है, अपनी अपनी टिक टिक करते रहते हैं। क्या अभी तक तो बाप का परिचय किसी ने नहीं दिया त्रिमूर्ति के क्षेत्र में? दिया है? नहीं दिया? अरे बेसिक वालों ने भी नहीं दिया है? बेसिक वालों ने दिया या नहीं दिया? नहीं दिया? अरे तो क्या दुनिया को बेवकूफ बनाते रहे है? अच्छा एडवांस वालों ने दिया होगा, दिया क्या? दिया कौन सा चित्र रखा सामने? ऐसा कौन सा चित्र सामने रख दिया समझाने के लिए जो सारी दुनिया में विख्यात है? सारी दुनिया में जो भी खुदाइयां देश विदेश में हुई हैं, उनमें सबसे जाति तादाद में वो लिंग मूर्तियां मिली हैं, जिनकी असली यादगार आज से 2500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के द्वैतवादी युग में सोमनाथ मंदिर में दिखाई गई थी, बनाई गई थी। तो उस यादगार को समझाने का चांस अभी तुम बच्चों को मिला है। हा? अभी तक चांस ही नहीं मिला था त्रिमूर्ति के चित्र में समझाने का चांस ही नहीं मिला है? त्रिमूर्ति के चित्र में वो 32 गुणों वाला चित्र है नहीं है या नहीं है? अरे तो बेसिक ब्राह्मणों ने भी नहीं समझाया और एडवांस ब्राह्मणों ने भी नहीं समझाया। अरे बोलो, समझाया या नहीं समझाया? समझाया, आपने समझाया है? है एडवांस? कौन कौन से एडवांस वालों ने समझाया है? बेसिक वालों को समझाया कि ये जो 32 किरणों वाला चित्र रखा है निराकार लिंग है, जिसमें बीच में ये 32 गुण वाला चित्र किसका है?
निराकार नहीं है,
निराकार नहीं है। समझाया? कोई ने समझा होगा? समझा है? कोई भी नहीं समझा। अभी बाप कहते हैं तुम्हें समझाने का चांस मिले, और शिव जयंती आती है असली आर्टिफिशियल शिव जयंती की तो बात ही नहीं, तो चांस अच्छा है या चांस नहीं है? चांस समझाने का अच्छा है, क्योंकि शिव जयंती मनानी तो है अच्छी तरह से है। माने अभी तक 80 साल से जो मनाते चले आए वो अच्छी तरह से नहीं मनाई थी है, आर्टिफिशियल समझानी थी। क्यों? त्रिमूर्ति के चित्र में जो समझानी देते थे बाप की, वो कौन से चित्र पर देते थे? नाम तो दिया है त्रिमूर्ति, तीन मूर्तियां, अच्छा बेसिक वाले कौन से चित्र पर समझानी देते थे? कौन सी मूर्ति की बात? निराकार, निराकार जहां चित्र में ज्योतिबिंदु दिया हुआ था है, आत्मा का चित्र होता है, अच्छा आत्मा के बाप का चित्र होता है, है? चित्र तो नहीं होता, चित्र तो साकार का होता है, निराकार आत्मा का भी चित्र नहीं और आत्माओं के बाप का भी चित्र नहीं। देखो कैलेंडर भी बन रहे हैं, उस समय बन रहे होंगे 67-66 की वाणी है ना, निराकार या साकार के चित्र बन रहे थे है, या कास्केट के स्वरूप के चित्र बन रहे थे, चित्र बन रहे थे इसका मतलब बाबा का साकार की ओर है या निराकार की ओर है? है कैलेंडर बन रहे हैं, उम्मीद तो नहीं है क्या? भले कैलेंडर बन रहे हैं लेकिन बाबा को उम्मीद तो नहीं है। बॉम्बे वालों में ये उम्मीद नहीं है कि टाइम पर ये टिन के कैलेंडर भी पहुंचाएंगे। टाइम पर पहुंचाएंगे? कौन से टाइम की बात है? है 66-67 में, 66-67 में टाइम था शिव जयंती का है, के भक्ति मार्ग वालों की देखा दूनी निराकार शिवलिंग का चित्र बनाई दिया और शिव जयंती मनाने लगे। कि असली बात थी है, जैसे दुनिया वाले भक्ति मार्ग वाले मनाते हैं शिव जयंती, ऐसे मनाने की बात थी या असलियत थी? है भक्ति मार्ग वाले तो शिव जयंती मनाते हैं, महाशिवरात्रि नाम भी देते हैं, मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए जिस गोल पत्थर लिंग की तुम पूजा करते हो ये कौन है, तो क्या बताएंगे? है क्यों नहीं बताएंगे? कहते अरे ये शिव शंकर भोलेनाथ का चित्र है, नहीं है, है? शंकर का चित्र नहीं है, है? अच्छा मानते हैं, आप नहीं मानते, आप शिव शंकर को नहीं मानते, क्या मानते हैं फिर? अरे है साकार और निराकार, अरे वो तो जो भी चैतन्य चित्र मनुष्य का होगा उसमें साकार भी होता है और निराकार आत्मा भी होती है, तो साबित ये होता है कि असली जो शिव जयंती आने वाली है बाबा का इशारा कहाँ के लिए था, है कौन से सन के लिए था, है छत्तर के लिए इशारा था, जहाँ के लिए बताया कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी। त्रिमूर्ति के चित्र में क्या बताते हैं, विनाश किसके द्वारा है? शंकर द्वारा विनाश। तो छिहत्तर में हुआ नहीं है? हुआ। बेसिक ब्राह्मण वाले ये बात मानेंगे कि छिहत्तर में विनाश हुआ है, नहीं मानेंगे तो क्या शिव बाबा झूठा है? ब्रह्मा मुख से जो कहते आए हैं ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, वो झूठ बोला या ब्रह्मा झूठा? जैसे दुनिया वाले कहते हैं ये ब्रह्मा का चित्र दाढ़ी मूछ वाला तुमने क्यों रखा है, ये ब्रह्मा कैसे हो सकता, ब्रह्मा तो सूक्ष्म बतनवासी होता है, तो लड़ते हैं। तो छत्तर के लिए अगर बोला ब्रह्मा द्वारा स्थापना के बाद, ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो हुई नहीं हुई, ब्राह्मण धर्म की तो स्थापना हुई। नंबर बार ब्राह्मण बने या नहीं बने? बने। उसके बाद वो जो स्थापना हुई है श्रेष्ठ ब्राह्मणों की, उनकी प्रत्यक्षता तो तब ही होगी जब दुनिया में ये ढेर के ढेर अब्राह्मण भरे पड़े हैं, जो ब्रह्मा की औलाद बने ही नहीं। ब्रह्मा के रहते रहते ब्रह्मा की औलाद बनते ही नहीं। और चलो कोई ब्राह्मण कोई आत्माए पूर्व जन्म में बनी भी हो, तो वो आत्माएं भी जब इसी बात को नहीं मानती कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है तो शंकर द्वारा विनाश को मानेंगे, है? अरे पहली मूर्ति कोई नहीं मानते तो बाद वाली मूर्ति जो कमजोर कुरी के ब्राह्मण माने जाते हैं भक्ति मार्ग में, कितनी कुरियों के ब्राह्मण माने जाते हैं? 9 कुरियों के ब्राह्मण माने जाते हैं। और दुनिया में देखा जाए तो 9 ही मुख्य मुख्य धर्म हैं। जो आस्तिक हैं भगवान को मानते तो हैं, चलो निराकार को मानते हैं या साकार को मानते हैं, मानते तो हैं। और ये भी सब जानते हैं, भारतवासियों की हिस्ट्री देख लो 2500 वर्ष की, कौन से देश के लोग और किस देश के धर्म के लोग दूसरे दूसरे धर्मों में 2500 वर्ष में कन्वर्ट होते रहे है? कौन सा देश है? एक ही भारत देश है। दुनिया में कोई ऐसा विदेश या विदेशी धर्म नहीं है जिनके फॉलोअर्स दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए हों। वो तो दूसरे धर्म की पुस्तक भी नहीं उठाते, इतने पक्के होते हैं। तो ये भारतवासी 2500 वर्ष में ये जो अनेकानेक धर्म आए, इस्लाम, बुद्ध, क्राइस्ट और इनके सहयोगी धर्म आए, इन धर्मों में ये भारतवासी ही क्यों कन्वर्ट होते रहे? ऐसी क्या खास बात है? ड्रामा इन पे छिलका चढ़ा हुआ है। अच्छा, जो पक्के भारतवासी हैं उन पे छिलका चढ़ा हुआ है, या जो कच्चे भारतवासी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं उन पर छिलका चढ़ा हुआ है? है कच्चे वालों पर छिलका चढ़ा हुआ है, और जो पक्के भारतवासी वो तो कन्वर्ट नहीं होते होंगे है? न इस जन्म में जीवन रहते कन्वर्ट होते हुएंगे होते होंगे, और न अगले जन्म में कन्वर्ट होते होंगे। नहीं होते? अरे अगर नहीं होते तो जो दूसरे धर्म के धर्म पिताएं हैं वो धर्म पिताओं ने तो सिर्फ धर्म स्थापन किए हैं, इब्राहिम से लेकर के गुरु नानक तक भी देख लो, महर्षि दयानंद तक भी देख लो, जिस समय वो जीवित रहे जब तक क्या राज्य की स्थापना कर सके, धर्म की स्थापना की लेकिन राज्य की स्थापना नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि कोई भी धर्म पिता या उसका कोई भी बड़े से बड़ा फॉलोअर धर्मात्मा धर्माधीश कंट्रोलिंग पावर नहीं सिखाता, राजाई की पढ़ाई नहीं पढ़ाता। जब राजाई की पढ़ाई ही नहीं पढ़ी तो वो धर्म पिताएं राज्य कैसे स्थापन करेंगे? राजधानी स्थापन करेंगे, उनकी हिस्ट्री उठा के देख लो। फिर सवाल पैदा होता है, ये राजाई कैसे स्थापन हुई सभी धर्मों में, सभी देशों में? है बाप ने किया? राजाई की पढ़ाई कौन से बाप ने पढ़ाई? बाप तो सभी धर्म पिताए हैं, ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, वो भी तो बाप हैं। फिर हैं? शिव बाबा ने, शिव बाप ने नहीं, शिव बाबा ने राजाई स्थापन की। राजाई स्थापन की या राजाई की पढ़ाई? पढ़ाई दोनों काम किए। शिव बाप तो कहते हैं ब्रह्मा मुख से कि मैं त्रिकालदर्शी तो हूँ। क्या? त्रिकालदर्शी तो हूँ, लेकिन मैं मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। क्या? मास्टर का मतलब प्रैक्टिकल में त्रिकालदर्शी नहीं हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्योति विद्यु आत्मा फुदक फुदक की करेगी कि शरीर के साथ करेगी। तो प्रैक्टिकल में करने वाली आत्मा कौन साबित होती है? जयपिता तू पतित का नाम है, 500-700 करोड़ की प्रजा, सारी मनुष्य सृष्टि की प्रजा, उन सब का पिता प्रजापिता। तो सारी सृष्टि कलयुग के अंत में पतित तो होती है या पावन होती है? जो पतित आत्मा है वो कंट्रोल करेगी। है पावन बन के सबको पावन बनाएगी। पतित कैसे पावन बनेगा? और वो तो पतितम कामिंग कांटा, दुनिया में सबसे जास्ती पतित, जो 500 साल पहले तुलसीदास ने भी लिख के रख दिया, मैं पतितन को राजा। और बाप कहते हैं, जो बापों का बाप है, जिसका कोई बाप नहीं, वो कहते हैं कि पतित को पावन बनाना कैसे हो सकता है? क्या कैसे? संग के रंग से पतित से पावन बन सकते हैं। माना ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव उसकी याद से मन बुद्धि का संग होगा, होगा या नहीं होगा? है मन बुद्धि का संग होगा? और संग के रंग से हम पावन बनेंगे।
अच्छा
माना सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु की याद से हम पतित आत्माएं पतित से पावन बनेंगे। बस सब एक सुर से बोल रहे हैं। वो एक ज्योति बिंदु को जो बिंदु बिंदु आत्माएं सब एक जैसी है, पहचानेंगे कैसे कि वही एक ज्योति बिंदु है जिसकी याद से जिसका हम संग करेंगे तो हम पति से पावन बनेंगे। है कैसे पता चलेगा कौन से साकार में आया, कौन सा ज्ञान है? अगर वो ज्ञान किसी को मिल जाए, एवरलास्टिंग ज्ञान मिल जाए जिसमें बापों के बाप की पहचान हो जाए, तो जिसको ये ज्ञान हो जाएगा कि सुप्रीम सोल बाप हमें पढ़ा ही रहा है, तो फिर वो उसे कभी छोड़ेगा है? लेकिन यहाँ क्या देखने में आता है ब्राह्मणों की दुनिया में है? यज्ञ के आदि में लिख करके खून से देखते थे और सब टूट गए, अनिश्चय बुद्धि बन गए। और अभी सरकारी स्टाम्प पेपर पर लिख करके देते हैं, आज लिख करके देते हैं और चारों ओर ढिंढोरा पीटते हैं हमें भगवान बाप मिल गया, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत हमें मिल गया। और कल क्या होता है? अरे बता दो ना जल्दी से। है अनिश्चय बुद्धि क्या? मर जाते हैं, आज निश्चय करते हैं हम भगवान के बच्चे बन गए, भगवान हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है, सुप्रीम टीचर हमको पढ़ाई पढ़ा रहा है। और कल अनिश्चय बुद्धि बन करके बाप के बच्चे जैसे मर गए, अनिश्चय बुद्धि बन गए, माने बाप को मानते हैं या भूल गए हैं? तो जिसको पक्का निश्चय हो जाएगा कि सुप्रीम सोल बाप ज्योति बिंदु को हमने पहचान लिया, सुप्रीम सोल बापों का बाप हमें पढ़ाई पढ़ाता है, तो वो छोड़ेगा? हाँ तो ये कैसे छोड़ देते हैं? संका रंग लगता है। ऐसा तो नहीं कि सुप्रीम सोल बाप को पहचाना ही न हो, पक्का पक्का नहीं तो दुनिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं होता है जो कहे ये हमारा बाप है, 99% हमारा बाप है, 1% शायद न हो। तो अगर 1% न हुआ तो हम कल टूट जाएंगे, हम बाप के बच्चे नहीं रहेंगे। अरे ऐसे होता है? हैं? बाप है तो है और नहीं है तो नहीं है। ऐसे नहीं है आज हमारा बाप है और कल अंश बुद्धि हो जाए। अच्छा कहते हैं बाप है तो बाप का परिचय कौन देता है? है कौन देता है? माँ देती है। शैशव अवस्था से ही दुधमुहे बच्चे जब पलते हैं माँ की गोद में तब ही से बता ये तुम्हारा बाप है पापा आया परिचय देती है ना। तो बच्चे समझदार हो जाते हैं तो पक्का कर लेते हैं बाप है, हैं? कि कभी कभी किसी से कहते पता नहीं हमारा बाप होगा या नहीं होगा, हैं? तो यहाँ हमारी अम्मा कौन है ब्राह्मणों की? ब्रह्मा हैं? अरे परम ब्रह्म कितने साल के हो? अरे कितने साल के हो? तुम्हारी एज क्या है? 80 साल? 38 साल। परम ब्रह्म उसने तुमको बता दिया 38 साल पहले? ब्रह्मा बाबा ने बता दिया। अरे ब्रह्मा बाबा परम ब्रह्म है, है? फिर परम ब्रह्म कौन है? पिता। और परम ब्रह्म परे ते परे ब्रह्म परे ते परे रहने वाली अम्मा और वो भी प्रजापिता कैसे? हाँ दुनिया में ऐसे कभी देखा कि कोई बच्चा कहे कि पिता ने हमें जन्म दिया और पिता ने ही हमें परिचय दिया कि मैं तुम्हारी अम्मा भी हूँ और मैं तुम्हारा बाप भी हूँ? दुनिया में ऐसी परंपरा चलती है क्या? हैं? नहीं, ये तो झूठी बात है। तो सच्ची बात क्या है? है? कोई कोई तो क्लास में भी सो जाते हैं। कैसा भी बढ़िया वार्तालाप हो वाणी हो मुंह फैला के सोते रहते हैं। और बाबा ने तो बोला ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा पक्का संगठन बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी पांव नहीं रख सकेगा। जो कोई प्रश्न कर सके, अरे भाई जी, अरे माता जी, रात भर तुम क्या करते रहे है? और कहते हो भगवान बाप आया हुआ है, सुप्रीम टीचर दुनिया का आया हुआ है और उनके क्लास में आकर के तुम सो जाते हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें माँ नहीं मिली, न परम ब्रह्म के रूप में माँ मिली प्रैक्टिकल में इस जीवन में। और न दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में हमें माँ मिली, जो एडवांस में अपन को कहते हैं उनको भी नहीं मिली, और जो कहते हैं हम बेसिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं ब्राह्मण धर्म की, उनको भी नहीं मिली। असली माँ नहीं मिली,
मिली
मिली हाँ? असली माँ मिली होती तो ब्रह्मा के मंदिर बने होते यादगार, सारी सृष्टि की मनुष्य सृष्टि की असली माँ मिली होती तो ब्रह्मा की मूर्तियां मिलनी चाहिए और ब्रह्मा की पूजा होती होती।
अरे
खास भारत में तो माता की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं? तो माता के रूप में जो हमें बाप का परिचय दे और हमको एवरलास्टिंग जीवन जब तक रहे तब तक के लिए पक्का निश्चय हो जाए कि 100% हमारा यही बाप है, दूसरा बाप नहीं हो सकता, ये असलियत है कि ब्रह्मा की पूजा भी नहीं होती, मूर्तियां भी नहीं बनती, मंदिर भी नहीं बनते और कोई याद भी नहीं करता। तब सवाल पैदा होता है कि समस्या तो खड़ी कर दी है एडवांस ब्राह्मणों के सामने भी, और जो बेसिक ब्राह्मण ढेर की ढेर तादाद में है, जैसे महाभारत की यादगार में यादव और कौरव थोड़े थे या ढेर की ढेर तादाद में थे, तो बेसिक ब्राह्मण भी जैसे दुनिया में बेसिक पढ़ाई पढ़ने वालों की संख्या बहुत बहुत होती है या हायर क्लास की पढ़ाई पढ़ने वालों की संख्या बहुत होती है? तो समस्या तो आ गई दोनों प्रकार के ब्राह्मणों के बीच कि ब्राह्मणों ने अभी भी अपने असली बाप को नहीं पहचाना। जो बापों का बाप है, जिसका कोई भी इस दुनिया में बाप होता ही नहीं, इस दुनिया में तो क्या तीनों लोक में नहीं होता, न दुख धाम में, न सुख धाम में, न शांति धाम में। असली माँ मिली होती और असली माँ ने हमें बाप का परिचय दिया होता तो हम मरते दम तक यही बोलते और सभी ब्राह्मण बोलते कि हमें बाप मिल गया। तो इस समस्या का समाधान क्या आता है बुद्धि में? है बाप पट्टे ऊपर बैठ के ऊंची बात बताता है और सबसे पहले बताता है बापों का बाप तो कहते हैं शिव बाप इनकी बिंदी आत्मा का ही नाम शिव है, वो ब्रह्मा मुख से ही कहते हैं। भले उस ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं है, मंदिर नहीं है, कोई याद नहीं करता, तो ब्रह्मा मुख से निकले हुए वेद वाक्यों को भी कोई सुनता है, है? सुनाता है, अर्थ करके बताता है, वो भी नहीं। अच्छा, एडवांस में जो ब्राह्मण अपन को समझते हैं कि हम एडवांस की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो ब्रह्मा मुख से चलाई हुई वाणी को थर्ड क्लास कहते हैं, सेकंड क्लास कहते हैं, या फर्स्ट क्लास कहते हैं? फर्स्ट क्लास कहते हैं। पढ़ते हो तुम फर्स्ट क्लास वाणी? है कंधे ऊपर कर लिए। कोई कहते हैं ब्रह्मा मुख से निकली हुई, दादा लेखराज के मुख से निकली हुई वाणी को कोई ब्राह्मण है एडवांस में जो कहते हो वो फर्स्ट क्लास वाणी है, हम उसी को पढ़ेंगे, हम थर्ड क्लास क्यों पढ़े? कोई नहीं कहता। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट क्लास वाणी है तो फर्स्ट क्लास बच्चे होंगे, उन्होंने ही उस वाणी को जो ब्रह्मा मुख से चलाई गई उसको ज्यादा महत्व दिया होगा। जिन बच्चों को सुप्रीम सोल बाप ज्यादा में ज्यादा महत्व देता है, कौन से बच्चे हैं? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में कोई बच्चे हैं जिनको सुप्रीम सोल बाप ज्यादा से ज्यादा महत्व देता है? है? कोई नहीं है? बस एक ही है, एक ही है जो उस वाणी को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, व्याख्या करता है, जिसका नाम शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। शास्त्रों का व्याख्याता, योग की सिद्धि पाने वालों में गीता में भी उसका नाम दिया है, याद है? गीता में लिखा है कि सिद्धि पाने वालों में व्यास है नंबर वन, है? सांख्य योग के बारे में ये तो बोला, सांख्य योग पृथक वाला प्रवदंती ना पंडिता, लेकिन योग की सिद्धि पाने वालों में उसका नाम गीता में आया है। फिर वो व्यास, वो तो वेद व्यास हुआ, उसका नाम पूछा जा रहा है जो बात चल रही है व्याख्याता की। कोई बात, कोई मंत्र किसी को सुना दिया, सुनने वाले ने सुन लिया, उसके अर्थ को जानता नहीं, भाव को जानता नहीं, तो उस मंत्र से फायदा होगा है? उस मंत्र को रटने से, बोलने से वाइब्रेशन बनेगा, वाइब्रेशन तो नहीं बनेगा। वाइब्रेशन तभी बनेगा, भावना का उद्रेक तभी होगा, जैसे कवियों में भावना का उद्रेक होता है, तो कवियों को बड़ा विद्वान माना जाता है। वो भावना कोई भी बात की गहराई को व्याख्या पूर्वक समझा जाए, समझाया जाए, तभी भावना का उद्रेक होता है। तो गीता में वो श्लोक आया है, सिद्धानाम कपिलो मुनि, किसने बोला? हा, जिस कपिल मुनि के नाम पर है कांपिल्य नगर बसाया गया, जहां ब्रह्मा के मुख से निकली वाणी, किसके मुख से निकली? दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से निकली वाणी की व्याख्या हो रही है। व्याख्या होना आरंभ हुई, उस स्थान का नाम क्या पड़ा? कांपिल्य नगर, जहां महाभारत प्रसिद्ध पांडवों ने लंबे समय तक वनवास किया था। ये यादगार कहाँ लिखी हुई है? महाभारत में। वो कपिल मुनि सिद्धानाम कपिलो मुनि कहा जाता है, माना जो सांख्य और योग अलग अलग नहीं है, इसलिए बताया कि इन्होंने ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी की व्याख्या की, इसलिए सांख्य शब्द आता है। सांख्य का अर्थ है सह आख्या, सांख्य माने सह आख्या, माने व्याख्या के साथ जो बात बताई जाए, विस्तार से जो बात समझाई जाए, उसको क्या कहते हैं? सांख्य। और सांख्य शास्त्र के प्रणेता अव्वल नंबर पहले पहले जो थे वो कौन हुए? हैं? कपिल मुनि हुए, जिन्होंने ब्रह्मा मुख से निकली वेद वाणी जो असली वेद वाणी है उसकी व्याख्या की थी। पहले स्वयं समझा होगा कि बिना समझे व्याख्या कर दी, पहले समझा होगा फिर समझाया होगा। तो गीता में जो लिखा है योग की सिद्धि पाने वालों में कपिल मुनि हूँ, किसने बोला? ये किसने बोला? योग की सिद्धि पाने वालों में मैं सर्वोत्तम व्यक्ति कपिल मुनि हूँ। और बाप का परिचय देने की बात चल रही है, अरे बताओ भाई, बताओ किस कौन हूँ? शिव बाबा। शिव बाप नहीं, शिव बाप नहीं, शिव बाप, ये तो वोटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, अरे सबसे ऊपर बैठ करके दो दो बातें मत बदलो तुरंत की तुरंत। एक बार कहते शिव बाबा, दूसरी बार कहते शिव बाप। शिव बाप ने ब्रह्मा के मुख से बताया, सिद्धा नाम कपिलो मुनि, योग की सिद्धि पाने वालों में मैं कपिल मुनि हूँ, ये बताया। ये तो वो ही बात हो गई जैसे आप कहेंगे कि ब्रह्मा मुख से शिव बाप ने बताया मनमना बहु, अरे ये भी बताया होगा। बताया शिव बाप ने, बताया किसने बताया? है? फिर प्रजापिता। अरे प्रजापिता तो इस मनुष्य सृष्टि का पतितम व्यक्ति है, जो पतित से पतित होता है, जो आत्मा रामायण में खुद ही स्वीकार कर रही है मैं पतितन को राजा, सामान्य पतित नहीं। और बाप ने बोल दिया ब्रह्मा मुख से कि अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी है। तो रामायण किसने लिखी है? किसने? रामायण, राम का घर, रामायण राम का घर है। जहाँ रामायण होती है वहाँ राम ही राम होता है। इसलिए भक्ति मार्ग में मानते हैं जहाँ राम होता है वहाँ हनुमान जरूर होते हैं, क्योंकि राम का काम जो बड़े से बड़ा काम होगा वो भी हनुमान के बगैर हो ही नहीं सकता। तो वो रामायण शिव बाप के ब्रह्मा मुख से उच्चारे हुए महावाक्य के अनुसार ये पक्का हो जाता है, चाहे वाल्मीकि रामायण हो या तुलसी का रामायण हो, दोनों ही शास्त्र किसने लिखे? राम वाली आत्मा ने लिखे, जिसे शिव बाप कहते हैं, राम बाप को कहा जाता है, और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। अरे भगवान की आत्मा बताई रही है क्या? अगर बापों में कोई बड़ा बाप है मनुष्य सृष्टि का, तो कौन? राम वाली आत्मा। और 500-700 करोड़ बच्चों में, मनुष्य आत्माओं में, भले वो देव आत्माएं कभी बनी हो, उनके बीच बड़ा बच्चा कौन है? अरे बच्चों में बड़ा बच्चा कौन? मनुष्य सृष्टि के झाड़ में पहला पत्ता रूपी बड़ा बच्चा कौन? कृष्ण बच्चा। तो साफ साबित होता है कि राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। माना जो बच्चा बुद्धि आत्मा है, उसने बच्चा बुद्धि जैसी होती है, जितनी होती है उतने स्तर पर षष्ठ रूपी रंगमंच पर माता का पाठ बजाया। ऊंचे से ऊंचे स्तर की माता का पाठ बजाया या नंबरवार स्तर की नामधारी आत्मा, जिसके लिए बोला मैं जिसमें प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं, तो दादा लेखराज ब्रह्मा नंबरवार ब्रह्मा में है या अव्वल नंबर ब्रह्मा में है? क्योंकि अगर अव्वल नंबर ब्रह्मा होता तो सन 47 से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम का ब्राह्मणों का संगठन आरंभ नहीं होता। उससे पहले ब्रह्मा मुख से ही शिव बाप ने बताया कि पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, बाबा मुरली नहीं चलाते थे ब्रह्मा बाबा, क्या होता था? 10-15 पेज अमृत बेले बैठ करके लिखते थे। कौन लिखता था? ब्रह्मा दादा लिखता, बच्चा बुद्धि के रूप में लिखता था या सालिम बुद्धि बाप के रूप में लिखता था? बच्चा बुद्धि के रूप में लिखता था। वो ही बच्चा बुद्धि के मुख में प्रवेश करके शिव बाप ने जब वाणी चलाई तो उस ब्राह्मण संगठन का नाम क्या हुआ? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। उससे पहले संगठन का नाम क्या था? ओम मंडली नाम था। तीन अक्षर का मिल, आ माने ब्रह्मा, ओ माने विष्णु, मा माने महेश, ये तीन आत्माएं हैं। जब शिव आते हैं तो तीन मूर्तियों के साथ आते हैं। एक मूर्ति का संगठन नहीं, कितने का संगठन? तीन मूर्तियों का संगठन जिस शब्द में साबित होता है उसका नाम पड़ा ओम मंडली। तो पहले संगठन का नाम था ओम मंडली, लेकिन शास्त्रों में आया है कि ब्रह्मा ने तीन बार सृष्टि रची, तीनों बार पसंद नहीं आई और तीनों बार बिगाड़ते चले गए। पहली सृष्टि ओम मंडली जब रची गई तो उस समय भी हिस्ट्री उठा के देखी जाए उस मंडली में जो मूर्ति प्रसिद्ध है, जिस मूर्ति के साथ टाइटल लगाया जाता है यादगार में, हर हर बम बम, उस मूर्ति के संसार में प्रत्यक्ष होने से पहले एटम बम का नाम निशान नहीं था। इससे साबित होता है कि भगवान बाप इस सृष्टि पर जब आते हैं तो स्थापना के साथ साथ विनाश भी होता है, फाउंडेशन लग जाता है। जो बोला है वाणी में, मुरली में, याद है किसी को? है यज्ञ के याद से ही यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा पहला नंबर, अम्मा बड़े से बड़ी दुनिया की अम्मा, और बाप क्या? मनुष्य सृष्टि में जितने भी ग्रेट फादर्स हुए बाप के रूप में, धर्म पिताओं के रूप में, उन धर्म पिताओं में ग्रेट ग्रेट शब्द जिसके नाम से पहले लगाया जा सकता है, लगाया जाए, वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, मनुष्य सृष्टि का अव्वल नंबर का बाप, जिसका गाइन मुसलमानों में भी आ रहा है कि अल्लाह ने आकर अल्लाह अव्वल दीन की स्थापना की। क्या किया? अल्लाह ने, अल्लाह माने ऊंचा तो ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा इस दुनिया में होता है, या आत्मा आत्मा भाई भाइयों की दुनिया में होता है, है? वहां तो नीचे होने का सवाल ही नहीं। तो साकार दुनिया में जो अल्लाह है, जो ऊंचे से ऊंचा है, उसने अव्वल नंबर आदि सनातन सत्य सनातन धर्म की स्थापना की, क्योंकि इस दुनिया में वो ही अकेला सत्य है। सत्य सदा काल होता है या अल्पकाल होता है? कहते हैं झूठ को पांव नहीं होते, आज देखने में आता है झूठ है झूठ है झूठ है, ऐसा समय भी आता है कि सत्ययुग की दुनिया बन जाती है, झूठ का नाम निशान गायब हो जाता है। जो कहते हैं सच्चाई सर पर चढ़कर बोलती है, तो वो सत्य एक ही है जिसके लिए सबसे जास्ती गैन सिख धर्म में होता है, सत श्री अकाल। क्या गैन? सत श्री अकाल। अंग्रेज लोग भी मानते हैं गॉड इज ट्रुथ। गॉड क्या है? सत्य है। ट्रुथ इज गॉड है, सत्य ही भगवान है। और भारत में भारतवासी क्या कहते हैं? भूल गए, सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो सत्य शिव, शिव माना कल्याणकारी, और ये तो पक्का है। दुनिया में जो भी बाप होते हैं अपने बच्चे बच्चियों के कल्याणकारी होते हैं या अकल्याण चाहते हैं? हैं? कल्याण क्या? सामान्य बाप होगा वो भी क्या चाहता है, मेरे बच्चे बच्चियों का कल्याण हो? खासकर जिस बड़े बच्चे को राजाई का वर्षा दिया जाता है उसके लिए तो कल्याण ही चाहेगा। तो जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप होगा वो कोई 500-700 करोड़ मनुष्यों में से किसी का अकल्याण चाहेगा? है? नहीं चाहेगा। इस सृष्टि में चाहे मां मृत्यु के समय, महाविनाश के समय, एटम बमों की धधकती हुई ज्वाला, भूकंपों की आग के बीच अंतिम समय में जन्म लेने वाले जो मनुष्य सृष्टि के बच्चे हैं, उन बच्चों को इस ज्वाला में धधकते हुए छोड़ करके चला जाएगा? हैं? नहीं जा सकता। एक एक बच्चे का कल्याण करके जाएगा या अकल्याण करके जाएगा? और कल्याण वही कर सकता है जिसका पहले है अपना कल्याण हुआ पड़ा, अपना ही कल्याण नहीं हुआ, अपनी ही ज्योति बिंदु आत्मा इस झूठे शरीर के पांच तत्वों वाले बंधन से मुक्त नहीं हुई तो दूसरों को मुक्त कैसे कराएगा। पहले खुद मुक्ति का अनुभव करे तब दूसरों को मुक्ति दे सकता है, है? गलत बात या सही बात तो बताओ। मुक्तिदाता जो 32 किरणों वाले चित्र में लिखा हुआ है शिवलिंग के आसपास, वो मुक्तिदाता कौन सी आत्मा है? अरे बताओ बताओ जल्दी बताओ, हैं? राम को तो दुनिया में 14 कला संपूर्ण कहा जाता है, भले बाप ने कह दिया। राम वो नहीं जो त्रेता वाला, इसका मतलब कोई राम वाली आत्मा संगम युग में है तो जिस समय बाप ने बोला वो त्रेता वाला राम नहीं, लेकिन वो आत्मा संगम वाली तो है, हैं? जिस समय बोला गया वो संगम वाली राम वाली आत्मा, उस समय क्या वो संपन्न है? है? उसके संपन्न रूप की यादगार बन सकती है, है? नहीं बन सकती। और बाप कहते हैं बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म इकट्ठा है, वो राम नहीं जो संगम युग में उस समय पुरुषार्थी था, वो राम की बात है जो ज्ञान सूर्य के वंश में जन्म लेने वालों में अव्वल नंबर है, जिसे शास्त्रों में रघुकुल भूषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, पुरुषों में उत्तम, पुरुष माने आत्मा, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है, उनमें उत्तम से उत्तम पाटधारी आत्मा, पुरुषोत्तम जब बने जो शास्त्रों में नर से नारायण बनने वाले को भी पुरुषोत्तम कहा जाता है, और वो नारायण वाली आत्मा रचना है या रचयिता है? हा? बताओ बताओ सोच समझ के बताओ, हैं? क्या है? अरे बताओ ना महाराज, हैं? रचयिता है। अच्छा नारायण वाली आत्मा रचयिता है या रचना है? आप कहते हैं रचयिता और बाबा कहते हैं कि रचयिता साकार तो जरूर होता है, रचना भी साकार होती है। जैसे कुमार साकार तो गड़ा भी साकार, लेकिन जो रचयिता है वो ऊंचे ऊंचे है या नंबरवार है। और नारायण के लिए ये गायन है नर से नारायण, तो नर मनुष्य जिसका मन होने से मनुष्य कहा जाता है, चंचल मन वाला मनुष्य उसको निश्चल मन वाला नारायण बनाने वाला उससे भी कोई ऊंचा होगा या नीचे होगा है? ऊंचा होगा। नारायण साकार तो बनाने वाला भी साकार होगा। वो कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा तो साकार और निराकार के मेल को शिव बाबा कहा। आपकी आत्मा निराकार और आपका शरीर साकार, आप तो शिव बाबा हैं। लेकिन शब्द जोड़ा हुआ है शिव, शिव माने कल्याणकारी बाबा। ऐसा कल्याणकारी जैसा कल्याणकारी इस मनुष्य शक्ति में कोई भी मनुष्य हो ही नहीं सकता। तो वो नारायण को नर से नारायण बनाने वाला कौन है?
बाबा।
अभी तो कहते नारायण रचयिता है, अभी कहते शिव बाबा को ही अलग है। अरे नारायण रचयिता है, एवरलास्टिंग रचयिता, जिसका कोई रचयिता न हो। यह रचना है नारायण। क्या है, रचयिता है या रचना है? लक्ष्मी नारायण के चित्र में क्या लिखा रहता है ऊपर? रचयिता और रचना का परिचय। तो लक्ष्मी नारायण के चित्र से ऊपर कोई है? वो चित्र दिया है या नहीं दिया है? वो ऊपर है, उनके समकक्ष बराबर है या नीचे है? तो ऊपर वाला रचयिता होगा या नीचे वाला रचयिता होगा? तो कौन है? लक्ष्मी नारायण के चित्र के ऊपर क्या है? त्रिमूर्ति है, तीन मूर्तियां हैं। तो रचयिता एक होता है, एक व्यक्तित्व रचना रचने वाला होता है परिवार का। इस दुनिया में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परिवार है, कुटुंब है, जिसे हम भारतवासी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, उसका रचयिता एक या तीन तीन? दुनिया में भी कहते हैं कि बच्चों के रचयिता माता पिता होते हैं, तो भी तो दो ही होते हैं। कि तीन होते हैं, दो होते हैं, लेकिन जो सार्वभौम पूजा है दुनिया में देखी जाती है, उस सार्वभौम पूजा में एक के लिए बोला गया है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। संस्कृत में त्वम एक पर्सनालिटी के लिए या दो चार के लिए, तो वो कौन? ये अव्यक्त मूर्ति क्या होता है? है जो निराकार है वो निराकार प्रवेश करके साकार बन जाता है।
प्रवेश करता है वो निराकार स्थिति,
निराकार प्रवेश करता है और साकार बन जाता है। एक आदमी बोलो ना, एक क्यों ही बोलने दो। हाँ,
पहले पहले प्रवेश करता है उनको आत्मान बनाता है,
पहले पहले प्रवेश करता है जिस साकार में। हाँ,
वो निराकार स्थिति जब धारण कर लेता है वो अव्यक्त होता है, वो इंद्रियों का।
कौन निराकार स्थिति धारण कर लेता है? साकार शरीरधारी आत्मा जो शरीर के बगैर इस संसार में नहीं रह सकती, वो आत्मा। अरे, वो आत्मा की यादगार है शिवलिंग। जो आत्मा इस मनुष्य सृष्टि में शरीर धारण किए बगैर इस सृष्टि पर नहीं रह सकती, माना वो आत्मा परमधाम वासी नहीं होती, आत्मलोक वासी सोल वर्ल्ड का वासी नहीं हो सकती। हाँ बोला,
है साकार में रहते हुए वो केस धारण कर लेते
हो, माना साकार में रहते हुए वो आत्मा कहाँ रहती? जो साकार शरीर है वो निराकार धाम आत्माओं का धाम बन जाता है। यही तो बोला मुरली में ब्रह्मा मुख से कि तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, तो नंबर बार उतार लेंगे या एक साथ उतार लेंगे, तो कोई बल अब्बल नंबर होगा या नहीं होगा, तो जो अब्बल नंबर होगा परम धाम को अपने शरीर रूपी घर में उतार लेगा, उसका शरीर रूपी घर क्या बन गया? परम धाम बन गया। अरे, उस साकार शरीर रूपी घर की यादगार है लिंग, वो संपन्न स्टेज जहाँ आत्मा तो संपन्न है ही, आत्मा माने पुरुष, आत्मा किसे कहा जाता है? पुरुष। पुरुषों में उत्तम उत्तम सप्तम नंबर वार बनने वाली 500-700 करोड़ आत्माएं नंबर वार हैं कि नहीं, एक से एक बढ़कर के पुरुषोत्तम है या नहीं, वो पुरुषोत्तम युग जो ज्यादा से ज्यादा बोला 100 साल, उस 100 साल के पुरुषोत्तम संगम युग में वो सभी मनुष्य आत्माएं कहां की वासी हो जाती है, परम धाम वासी हो जाती है, अपने अपने शरीर में परम धाम बना लेती है क्या? अपने अपने शरीर में परम धाम नहीं बनाती। अरे सौ करोड़ मनुष्य आत्माएं अपने अपने शरीर में परम धाम क्यों नहीं बना सकती? है माने लक्ष्मी का शरीर पावन नहीं बनता। अरे है क्या
नहीं बनता?
अच्छा दो का बनता है ना। अरे सब का नहीं बनता, दो का तो बनता है। अरे नहीं, सत्य उसे कहा जाता है जो इस सृष्टि पर सदा काल मौजूद रहे। और भारत के शास्त्रों में कोई व्यक्तित्व तो है जिसका कोई माँ बाप नहीं माना जाता, जिसका कोई जन्म दिवस नहीं मनाया जा सकता, जिसके जन्म की कोई तिथि तारीख हो ही नहीं सकती, कौन है? है शंकर। नाम काम के आधार पर पड़ते हैं, शंकर नाम मिक्सरिटी का है या शुद्ध एक है? है एक है तो शंकर सत्य है या उसमें असत्य भी है, तब शंकर कहा जाता है। हैं? हैं? असत्य है तब शंकर कहा जाता है। ऐसा काम दिखाई देता है, कभी एक आत्मा बोलती है तो पता लगता है ये तो असत्य बोलता है, ये सत्य वाणी नहीं हो सकती। जो शिव बाप ने ब्रह्मा मुख से मुरली में बोला, ये ब्रह्मा बीच में इंटरफियर करके बोलता है। अब ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला होता है, मनुष्य होता है, अपूर्ण होता है या देवता होता है? तो शंकर का जो रूप है, नाम रूप चित्र या मूर्ति जिसकी यादगार है उसे संपन्न कहें हैं? याद में बैठा है। भगवान ने जो 4 सब्जेक्ट पढ़ाए उनमें से जो सबसे ज्यादा पावरफुल सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में अगर कोई फेल तो फेल माना जाएगा, अगर पास तो पास माना जाएगा, छोरी में भी पास माना जाएगा। अगर याद के सब्जेक्ट में फेल तो थ्योरी में भी फेल। थ्योरी माने बाप का ज्ञान उसको नहीं है, ज्ञान में मुख्य पॉइंट क्या, बाप का परिचय, बाप की पहचान, सारा ज्ञान ले लिया। जो बाबा कहते हैं मुरली में बार बार बोलते हैं, बच्चे बाप का परिचय देते ही नहीं। कहीं त्रिमूर्ति का चित्र आगे रखते हैं प्रदर्शनी में, कहते हमने बाप का परिचय दिया। कभी 32 करोड़ वाला शिवलिंग का चित्र पहले रख देते हैं, कहते हम बाप का परिचय देते हैं। तो क्या बाप का परिचय देते हैं? बाप को समझा है? बेसिक वालों ने समझा? अच्छा एडवांस वालों ने समझा है? जब बाप का परिचय ही नहीं समझा तो निश्चय बुद्धि हुए हो जाएंगे या अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे? तो ये ब्रह्मा की रची हुई तीसरी रचना है। पहली रचना रची उस ब्राह्मणों की दुनिया के संगठन का नाम ओम मंडली, दूसरी रचना रची उस ब्राह्मणों की दुनिया का नाम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, और तीसरी रचना रची जो ब्रह्मा की वाणी में ही घोषणा कर दी थी 66 में। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, माने 76 में। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो तीसरा संगठन बना या नहीं बना ब्राह्मणों का, जिसको एडवांस संगठन कहा गया, एडवांस पार्टी, ज्ञान में भी आगे आगे जाने वाली, योग में भी आगे आगे जाने वाली। और जब प्रवृत्ति मार्ग का परिपूर्ण संगठन बनेगा तो भक्ति मार्ग कब कहा जाता है? है 100% सात्विक प्रवृत्ति मार्ग कब कहे? अभी कहे है? कोई ब्राह्मण छाती टोक कर नहीं कहेगा कि हम प्रवृत्ति मार्ग के परिपूर्ण संगठन में हमारा नंबर आ गया है। अरे सन 76 में लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म बोल दिया तो वो लक्ष्मी नारायण एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में ये दम भर के कहते हैं क्या कि हम प्रवृत्ति मार्ग के संगठन में अव्वल नंबर हमारा नंबर बन गया। कह सकते हैं, और जब वो ही नहीं कह सकते तो दूसरा कोई कैसे कह सकते। इससे साबित हुआ कि चाहे वो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं हो, संसार में होने के मंदिर भी बनते हो, मूर्तियां भी बनती हो, लोग याद भी करते हो, चाहे वो शंकर के रूप में नाम रूप वाला पुरुषार्थी हो, वो भी पक्का प्रवृत्ति मार्ग वाला नहीं है। इसलिए शास्त्रों में शंकर को दोनों रूप में दिखाते हैं या सदा प्रवृत्ति मार्ग वाला दिखाते हैं, कभी निवृत्ति मार्ग वाला और कभी प्रवृत्ति मार्ग वाला। वो भी सात्विक प्रवृत्ति वाला ये नहीं, प्रवृत्ति तो है लेकिन आज है कल वो प्रवृत्ति गए दूसरी बना ली, तो सात्विक प्रवृत्ति कहेंगे है कि बदनामी वाली हो गई। तो लक्ष्मी नारायण भी नहीं कह सकते, उनकी आत्मा भी अभी पुरुषार्थी है, शंकर भी नहीं कह सकता, और जो जगत पिता गाया हुआ है उसकी गोद में पलने वाला जो पहला बच्चा है कौन है? कृष्ण बच्चा। कौन सी गोद में पलने वाला? साकार गोद में पलने वाला, देह रूपी गोद में पलने वाला, या बुद्धि रूपी पेट में पलने वाला है? बुद्धि रूपी पेट में पलने वाला जो कृष्ण बच्चा है, वो बच्चा भी संपन्न नहीं बना, क्योंकि बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। तो वो मूर्ति कौन सी है जिसके लिए गीता में कहा अव्यक्त मूर्तिना है? कैसे अव्यक्त? कैसे मंदिर में जाते हैं तो देखने में आती है, अव्यक्त तो उसे कहा जाता है जो आंखों से दिखाई न पड़े। जैसे आत्मा अव्यक्त है, आंखों से नहीं देखी जा सकती, परमात्मा भी अव्यक्त है, इन आंखों से कोई नहीं बता सकता परमात्मा कौन है। जिसे गीता में बताया परमात्मा इति उदाहरत, और परमपिता कौन है, परमपिता वाली आत्मा कौन है, ये भी कोई नहीं बता सकता। कोई बताएगा है? बड़े बड़े साधु संन्यासियों ने, बड़े बड़े महंतों ने, विद्वान पंडित आचार्यों ने बोल दिया शिवो हम आत्मा, परमात्मा आत्मा सो परमात्मा। फिर उनसे पूछा जाए अगर आप परमात्मा हैं, भगवान हैं, तो भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है, अंग्रेज लोग भी मानते हैं हेवनली गॉडफादर, मानते हैं कि नहीं? तो आपने तो कोई स्वर्ग नहीं रचा, तो कोई जवाब देंगे? नहीं देंगे। इससे साबित हुआ कि कोई एक आत्मा है जिसका शरीर भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर त्रिकालदर्शी के रूप में बात समान बनकर प्रत्यक्ष होता है, जो शिव बाप का विरुद्ध है। मैं तुम बच्चों को आप समान बना कर जाऊंगा। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाकर जाऊंगा। जो बनाकर जाऊंगा उस स्वरूप की पूजा होती है सार्वभौम। देश विदेश की खुदाइयों में वो लिंग मूर्तियां मिली हैं सबसे ज्यादा तादाद में। जिस लिंग मूर्ति में आत्मा रूपी बिंदु भी सोमनाथ मंदिर के सात्यु के यादगार में दिखाया गया था, वो आत्मा रूपी ज्योति बिंदु जो हीरे के रूप में दिखाया गया वो कौन सी आत्मा की यादगार है बताओ? अरे बताओ है, सबको राम वाली आत्मा, राम वाली आत्मा है। अरे शंकर याद में बैठा है, याद में बैठा हुआ जो पहला सब्जेक्ट रिवाइज कर रहा है वो संपूर्ण आत्मा है,
नहीं।
है?
नहीं।
कौन
रामलीला?
कैसे कैसे राम वाली आत्मा है? क्या क्या कर्तव्य किया? कर्तव्य वाचक तब कहें जब कोई कर्तव्य करके दिखाया हो। वो कर्तव्य है और राम शब्द का अर्थ भी है। रम्मिते योगिनो यस्मिन इति राम, योगी लोग जिस स्वरूप की याद में रमण करते हैं, आनंद मनाते हैं, खेल खेलते हैं, वो रूप राम है। तो कौन सा रूप राम है जो सारी दुनिया योग लगाकर मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाएगी, बिना योग के पाएगी या योग लगाकर पाएगी? तो वो कौन सा रूप है जिसकी स्मृति में सारी दुनिया के मनुष्य मात्र याद में रह करके रमण करेंगे, खेल खेलेंगे? आनंद बनाएंगे। वो सभी आत्माएं खुशी में बाग बाग हो जाएंगी और ऐसी स्टेज में शरीर छोड़ेंगी तो अंतमते सोगते, पहले जन्म में उनको मुक्ति ही मिलेगी, देह का बंधन अनुभव नहीं करेगी, चाहे वो कोई धर्म पिता की आत्मा हो या फॉलोअर की आत्मा हो। जैसे क्राइस्ट क्रॉस पर लटकाया गया, कीलियां गाड़ी गई शरीर में, तो जो क्राइस्ट की आत्मा है उसको देह का दुख अनुभव हुआ या जिसमें उसने प्रवेश किया, जिसका नाम पहले जीसस था, उसको दुख अनुभव हुआ है, जीसस को दुख का अनुभव हुआ। जिस आत्मा ने प्रवेश किया वो आत्मा तो सप्तधाम से आती है और वो सप्तधाम इसी सृष्टि पर था। सृष्टि की ऊंचे से ऊंची स्टेज में था या गड्ढे में था? है ऊंचे से ऊंची मन बुद्धि की स्टेज में था, जिसके लिए ब्रह्मा मुख से बाप कहते हैं। घर को याद करो, ऊंचा तेरा धाम। कैसा घर? ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। काम भी कैसा? ऊंचा काम। अरे रामवाली आत्मा का ऊंचा काम, और उसको जिसने सिखाया योग बल की पढ़ाई पढ़ाई, वो ऊंचा नहीं है? दोनों ऊंचा, दोनों ऊंचा कैसे? अरे परम धाम उस व्यक्तित्व के अंदर है या सूरज चांद सितारों की दुनिया के पार है? दोनों है, है? परम धाम नीचे उतार लिया माने ऊपर कोई आत्मा नहीं रही। अरे ऊपर कोई आत्मा रही या नहीं? ऊपर धाम में सूरज चांद सितारों से पार कोई रही या नहीं रही? है? वो फॉर दी टाइम बीइंग अल्पकाल के लिए या पांचों युगों के लिए सदाकाल के लिए? वो तो खुद कहता है इस सच्ची पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम एक ही शिव बाबा है जो गीता में बोला है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो सत है उसका इस सच्ची पर कभी अभाव नहीं हो सकता। तो वो सत्य कौन है जो इस सच्ची पर पांचों युगों में विद्यमान है? है? माना शिव बाप नहीं। अरे अभी तो कहते हैं परम धाम नीचे, कभी कहते हैं परम धाम ऊपर। अरे मनुष्य सृष्टि का बाप है या नहीं है? है? और मुरली में बताया, ब्रह्म वाक्य में बताया बाप माने वर्षा, बाप माने वर्षा। निराकार आत्माओं का निराकार बाप का वर्षा निराकारी या साकारी? क्या ज्ञान निराकारी वर्षा? उस निराकारी ज्ञान के वर्षे को बच्चे जो मनुष्य आत्माएं हैं वो नंबर वार धारण करते हैं या एक जैसा धारण करते हैं? तो अव्वल नंबर धारण करने वाला कोई है या नहीं है? जो अव्वल नंबर धारण करने वाला है वो ही मुसलमानों में आज तक भी गाया जा रहा है अल्लाह अव्वल दीन। अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला जिसे भारत में कहते हैं सत्य सनातन धर्म, सनातन माने पुरानी थी पुराना, जिससे पुराना धर्म कोई होता ही नहीं, और सत्य भी है, और सभी धर्म झूठे हैं, धर्म खंड झूठे हैं, क्योंकि आज से 2500 वर्ष पूर्व कोई धर्म खंड नहीं देखे जाते थे इस दुनिया में, सब समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। ढाई हजार वर्ष के बाद जब और धर्म पिताएं उनके फॉलोअर्स आने शुरू हुए, तो जनसंख्या जब बढ़ती है तो धर्म खंडों की संख्या भी बढ़ती है। मिसाल के तौर पर 500-550 वर्ष पहले अमेरिका का नाम निशान नहीं था मनुष्यों के मस्तिष्क पटल पर। कोलंबस ने पहली बार अमेरिका नाम का महाद्वीप खोज निकाला, तब से दुनिया ने जाना कि अमेरिका नाम का कोई महाद्वीप भी है। ऐसे ही 300-400 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का नाम निशान मनुष्यों की बुद्धि में नहीं था, बाद में पता चला। तो क्या ये महाद्वीप है? पहले थे या नहीं थे? ये सारे ही महाद्वीप, सारे ही धर्मखंड समुद्र के अंतराल में डूबे हुए थे। थे ही नहीं, और इनके धर्म पिताएं भी इस दुनिया में थे या नहीं थे? नहीं थे। तो सत्य हुए या असत्य हुए? सत्य वही है जो ऑलराउंड पार्टीधारी है, जो बीच में आते हैं और बीच में ही चले जाते, वो उन्हें सच्चा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सत्य बाप आते हैं, ट्रुथ गॉड फादर आते हैं तो सच खंड की स्थापना करते हैं सात्विक रूप में, जिसे सत्य युग कहा जाता है। कौन करते हैं? कौन सी आत्मा करती है सत्य खंड की स्थापना, सतयुग की स्थापना कौन करता है? तो फिर लटक गए है? अरे उस आत्मा का नाम बताओ है? इतना कठिन ज्ञान है क्या? बाप तो ब्रह्मा मुख से कहते हैं सहज ज्ञान है, सहज ज्ञान और सहज राजयोग। अरे सच्चे खंड सतयुग की स्थापना कौन करता है? है कौन? कौन? बोल बोल के चुप हो जाते। अरे कोई करता है या ऐसे ही शास्त्रों में बातें बना दी? कौन करता है? है संगमयुगी बच्चे करते हैं, संगमयुगी लक्ष्मी नारायण करते हैं सत्ययुग की रचना। रचयिता लक्ष्मी नारायण है।
अरे
अभी कहते थे लक्ष्मी नारायण रचना है, अभी कहना शुरू कर दिया लक्ष्मी नारायण रचयिता है। कितना कंफ्यूजन। अरे सच्ची सच्ची बात बताओ ना, सत्य एक होता है या दो चार बार बोला जा सकता है? तो एक बात बताओ है, सतयुग की रचना करने वाली आत्मा कौन? शिव बाबा, शिव बाप नहीं है? बेसिक वाले भी कहते हैं शिव बाबा, शिव बाप, उन्हें तो बिचारों को पता ही नहीं बाबा किसे कहा जाता है, बाप किसे कहा जाता है। और शिव बाबा तो मुरली में ही बता दिया, साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। निराकार को तो बाबा कहा नहीं जा सकता, निराकार तो निराकार आत्माओं का बाप है ज्योति बिंदु। वो ज्योति बिंदु का नाम शिव है, उस शिव ज्योति बिंदु आत्मा जो सुप्रीम फादर है, उसके बच्चे आपस में भाई भाई हैं। क्या है? भाई भाई। वो आत्मा रूपी बच्चों को जिन्हें मनुष्य शक्ति मनुष्य आत्मा कहा जाए, वो मनुष्य आत्माओं का बाप है, बाबा नहीं। मुरली में ही बता दिया बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। अरे यहाँ भी बाबा किसको कहते हैं? ग्रैंडफादर को कहते हैं। तो साबित हो जाता है कि बेसिक के बच्चे तो यही नहीं जानते कि शिव बाबा में और शिव बाप में क्या फर्क है। तो बताओ सतयुग की स्थापना करने वाला कौन है? शिव बाप या शिव बाबा? शिव बाबा। एक है या दो है?
एक
है। एक आत्मा है या दो आत्माएं हैं? है दो आत्माएं है। आत्माएं दो, शिव बाप मनुष्य आत्माओं का बाप है या पांच तत्वों वाले मनुष्य आत्माओं के शरीरों का बाप है? है आत्माओं का बाप मन बुद्धि रूपी आत्मा जिनमें विराजमान है, उन बच्चों को पढ़ाई पढ़ा करके जो ज्ञान का अकूट भंडार कहा जाता है बाप, वो अकूट भंडार दे करके वापस जाता है या नहीं कि बैठा रहता है? और वाणी में तो बोल दिया मेरे पास जो कुछ भी है मैंने तुम बच्चों को सब कुछ दे दिया, मैंने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। क्या कुछ भी नहीं रखा? जो ज्ञान का अकूट भंडार है, निराकारी भंडार, निराकारी आत्माओं को वर्षे में देने के लिए उसने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। तो उसके जाने का टाइम हो गया या रह गया? हो गया, टाइम भी निर्धारित कर दिया। पुरुष माने चैतन्य आत्माएं, चैतन्य आत्माएं 500-700 करोड़ जो एक दूसरे से उत्तम 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 हैं या नहीं, उनके लिए पुरुषोत्तम संगम युग ज्यादा से ज्यादा कितने साल का बताया?
100 साल।
100 साल। कौन सा सन बनता है? 100 साल कब पूरे होते हैं? 2036 में। तो चैतन्य आत्माओं को चैतन्य ज्ञान दे करके, निराकारी ज्ञान देकर इस योगी बना दिया कि वो पहचान सके कि इस मनुष्य सृष्टि में मेरा बाप कौन है। और उस मनुष्य सृष्टि में पहला बच्चा है, बच्चा बुद्धि कौन? कृष्ण वाली आत्मा। वो अव्वल नंबर बच्चा बुद्धि अगर समझ जाएगा तो सारे बच्चे समझ जाएंगे। वो बच्चा जब तक नहीं समझेगा तो 500 करोड़ मनुष्य मात्र भी बाप को नहीं पहचान सकते। जो ज्ञान का मुख्य पॉइंट है क्या? बाप की पहचान। इसके लिए शिव बाप मुरली में बार बार रोना रोते हैं, बच्चे अपनी ही टिक टिक करते रहते हैं, बाप का परिचय कोई देते ही नहीं। क्या टिक टिक करते रहते हैं? है? क्या टिक टिक करते रहते हैं? अरे 32 किरणों वाले चित्र पर बताएंगे मुक्तिदाता, ये लिंग है। अरे लिंग में मुक्तिदाता साबित होता है? शरीर के बंधन से मुक्ति चाहिए, शरीर के अंदर इंद्रियों से जो दुख मिलता है उससे मुक्ति चाहिए या लिंग के अंदर मुक्ति होती है? है? तो जिसको शरीर ही नहीं है, लिंग दिखा दिया, समझाया भी नहीं कि ये लिंग रूप कैसे साकार भी है और निराकार भी है। जो शास्त्रों में बताया सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा, साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है, दोनों ही इस संसार के दुख का हरण करने वाले हैं। निराकार के बगैर, निराकार का वर्षा, निराकारी ज्ञान लिए बगैर साकार भी मुक्त नहीं हो सकता और दूसरों को मुक्ति दे भी नहीं सकता। और साकार के बगैर निराकार भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मुरली में बोला है, आत्माओं का बाप मनुष्य सृष्टि के बाप पर फिदा हुआ है। आशिक बनकर के आया है और जिस पर फिदा हुआ वो क्या हुआ? वो माशूक है। सुप्रीम सोल ही जिसका आशिक है तो इस मनुष्य सृष्टि में सारी मनुष्य सृष्टि का माशू कौन होगा जिसके पीछे पीछे सारी दुनिया भागे? आशिक माशूक के पीछे भागता है या मासूक आशिक के पीछे भक्त है। तो शिव बाप ने अपनी बात तो बता दी, मुरली में ही बता दी। क्या शिव बाप भारत पर आशिक बनकर के आया है? भारत को माशूक बनाया, तो सारी दुनिया को माशूक ही बनाना पड़े। माशूक के पीछे सभी आशिकों को भागना पड़े या नहीं भागना पड़े? भागना पड़े। जैसे यादगार में बारात जाती है तो आगे आगे कौन जाता है? अरे कौन जाता है? बारात का मुखिया कौन? और पीछे पीछे कौन जाते हैं? बाराती जानते। तो ये बड़े से बड़ी बारात है संसार की, इस बड़े से बड़ी बारात इसको सारी दुनिया फॉलो करती है। ये परंपरा चली आई है कब से? संगम युग से। किसने चलाई है? किसने चलाई है? शिव बाप ने चलाई, शिव बाबा ने चलाई। बड़ी मुसीबत, अभी बताया सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। जो निराकार शिव है वो स्वयं कहता है ठोक ठोक कर, मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाऊंगा। दुनिया में राजा होता है, हिस्ट्री में बड़े राजा हुए, सभी राजाओं ने मोस्टली अपने बड़े बच्चे को राजाई का वर्षा दिया। जो बड़ा बच्चा है वो राज्य की सारी शक्ति समेट कर बैठता है, जो बाप से उसे मिलती है। राज्य का सर्वशक्तिवान किसे कहेंगे? है राजा को। वो बाप समान है या बाप है? है बाप समान है या बाप है? राज्य में रहने वाली पब्लिक उसको क्या कहती है? बाप समान, बाप तो नहीं कहती है। और जो राज्य लेने वाला बड़ा बच्चा है वो भी अपन को क्या कहता है? है बाप समान, मुझे राज्य की सारी सत्ता मिली हुई, परंतु मैं बाप नहीं हूं कहता है? है नहीं कहता। यही बात मुसलमानों में आ रही है, कही जाती है आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। आत्मा में जो नूर होता है, रूहानियत होती है, वो रूहानियत पवित्रता की होती है या अपवित्रता की होती है? पवित्रता की रूहानियत होती है। बोरुवानियत। कोई भी धर्म पिता के चित्र को देखो, महात्मा बुद्ध को देखो, क्राइस्ट को देखो, गुरु नानक को देखो, उनकी आंखों में वो नूर देखने में आता है या नहीं आता है? सत्यधाम से आई है, डायरेक्ट सत्यधाम से। जो सत्य बाप का घर है, सोल वर्ल्ड से आई है। और दुनिया में भी देखा जाए, बाप का बड़ा बच्चा कहां से आया? कोई भी बाप का बड़ा बच्चा दुनिया में कोई पूछे ये कहां से आया तो क्या जवाब देंगे? है? अरे अरे दुनिया वाले क्या जवाब देंगे? हैं? माँ से आया। अच्छा माँ से पूछो, माता जी आपके अंदर ये बच्चा कहाँ से आया? वो तो फकुर से बोलेगी, बाप से आया और कहाँ से आया? तो जैसे लौकिक दुनिया में देखा जाता है, आखिरी बच्चा कहां से आया? बाप से आया। अच्छा बाप से बच्चा जड़त रूप वाला पहले आया या चैतन्य आत्मा पहले आई? है? जो बाप से माँ के अंदर गर्भ में आया वो पांच तत्वों का जड़ रूप बीज कहो, शुक्राणु कहो, वो आया, जड़ आया या चैतन्य आत्मा आई? अब जो पहला कुटुंब है संसार का, जिसे वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है, सारी वसुधा के जो भी मनुष्य मात्र हैं, वो सब उस बाप की संतान है। इस बाप की संतान है, सारे मनुष्य मात्र किस बाप की संतान है? नहीं बताएंगे, क्योंकि हम सब बीज रूप आत्माएं हैं और बीज रूप आत्माओं पर दूसरे धर्म का कबर चढ़ा हुआ है, इसलिए हम जल्दी नहीं बताएंगे। कि हम एक निराकार आत्मा की संतान हैं या साकार और निराकार दोनों मेल की संतान है? किसकी संतान है? साकार शरीर की संतान हम पहले हैं या निराकार आत्मा की संतान हम पहले हैं? इस सृष्टि में निराकार की संतान हम पहले हैं, और साकार सृष्टि पर कैसे होता है? साकार सृष्टि पर क्या प्रक्रिया है? है? साकार सृष्टि पर जो माता कही जाती है, धरणी रूपी माता कही जाती है, धारणा शक्ति वाली माता कही जाती है, उस माता के गर्भ में लौकिक दुनिया का मिसाल दिया, तो साकार पहले आता है, निर्जीव पहले आता है, पांच तत्वों का पुतला पहले आता है या चैतन्य आत्मा पहले आती है? तो अब बेहद की सृष्टि में वो बेहद का बाप, उस बेहद के बाप में से जो पहला पत्ता जन्म लेगा ना, इतना तो मानते हैं। उससे पहले बच्चे का शरीर पांच तत्वों का पुतला इस सृष्टि में पहले आएगा माता के गर्भ में या आत्मा पहले आएगी? अरे कुछ तो बोलो, है? है? पांच तत्वों का पुतला पहले आएगा, मना जो पांच तत्वों का पुतला आएगा भले सार रूप में बीज रूप में आएगा। इस दुनिया में हम उसे शुक्राणु कहते हैं, वीर्य कहते हैं, वो माता के गर्भ में पहले आता है। तो जो बेहद की साकार दुनिया है, जब नई सृष्टि बनती है तो उस नई सृष्टि में जो पहला पत्ता कूला कला संपूर्ण बच्चा जन्म लेता है, उसका पांच तत्वों का जड़ चोला पहले आता है या बाद में आता है? हैं? पहले आता है ना, तो बाप से आता है या माँ से आता है? हैं? बाप से आता है। वो बाप कौन? अरे वो बाप कौन? फिर प्रजापिता पतित का नाम ले दिया। शिव बाबा, शिव बाबा जिसे कहा वो शिव नाम पहले रख दिया। क्या नाम रख दिया? शिव नाम रख दिया। अरे शंकर नाम रख देते, शंकर तो फिर भी साकार होता है, शिव तो बिंदी का नाम है, बिंदी आत्मा चैतन्य में से जड़ तत्व का सार रूप बीज रूप वो भ्रूण कैसे आएगा? अरे शिव से आता है, दो का मेल शिव बाबा कहा जाता है, निराकार आत्मा ज्योतिबिंदु और साकार बड़ा रूप लिंग जो ब्रह्मा मुख से मुरली में भी बोला। क्या छोटा रूप नहीं याद आता है तो क्या करो? हैं? बड़े रूप को याद करो। जो चैतन्य आत्मा है, अव्यक्त है, अनुरूप है, गीता में भी कहा अणु अणियांश मनुस्मरेत्य, अति सूक्ष्म है। जो वैज्ञानिकों के यंत्र हैं, जो अणु को एटम को भी पकड़ लेते हैं, वो यंत्र भी उस अनुरूप आत्मा को पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते। इतनी सूक्ष्म है वो चैतन्य आत्मा, जिसका नाम रख दिया शिव। क्या क्या नाम रख दिया? शिव। शिव बुद्धि है या मन है या मन बुद्धि दोनों है? है बुद्धिमानों की बुद्धि है, उसमें चंचल मन का नाम निशान नहीं है। और शिवलिंग में, शिवलिंग में मन है, बड़ा चंचल है। इंद्रियों से मन तो पड़ा रहता है, लेकिन वो लिंग रूप जिसकी हम पूजा करते हैं सोमनाथ में, जो लिंग दिखाया गया उस शिवलिंग में आत्मा चैतन्य है या जो लिंग बड़ा रूप है वो चैतन्य है? आत्मा चैतन्य है। जो हीरे के रूप में दिखाई गई थी सोमनाथ मंदिर में, वो हीरा किसकी यादगार है? अरे जोर से बोलो, हम बहरे आदमी हैं। हीरो पार्टदारी की यादगार है, क्योंकि शिव न हीरो बनता है न जीरो बनता है। शिव सुप्रीम सोल ब्रह्मा के मुख से मुरली में कहते हैं क्या? न मैं चक्र में आता हूँ, न मैं गिनती में आता हूँ। क्या आत्माएं की 500-700 करोड़ मनुष्यों की गिनती हो सकती है, लेकिन मेरी गिनती नहीं हो सकती। जो गिनती में आए वो चार युगों के चार सीन वाले ड्रामा के चक्कर में भी आए। मैं न चक्कर में आता हूँ न गिनती में आता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि न मैं पूज्य बनता हूँ न मैं पुजारी बनता हूँ। इसका मतलब हुआ कि सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग और बीच में हीरा जड़ा हुआ था, वो एक व्यक्तित्व की तो यादगार है, लेकिन वो व्यक्तित्व पूज्य बनता है, देवता और द्वापर युग से पुजारी भी बनता है। जो पूज्य नहीं बनता, पूज्य माने पूजने योग्य, वो पुजारी भी नहीं बनता। कौन? शिव ज्योति बिंदु न पूज्य माने पूजने योग्य भी नहीं बनता और पुजारी भी नहीं बनता। बोलता भी है ब्रह्मा मुख से मुरली में, क्या है? क्या बोलता है? बोलता है निराकार को याद किया जा सकता है, निराकार अव्यक्त को याद कर सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं कर सकते। इसलिए भक्तों ने या कहें शिवलिंग की वो सार्वभौम मूर्ति बनाने वाले ने, मूर्तिकार ने या कवि ने उस स्वरूप को कैसा बना दिया है? बड़े रूप में, निराकार के रूप में आत्मा रख दी। जो आत्मा पूज्य बनती है, देव देव महादेव, देवताएं पूज्य होते हैं। उन पूजने योग्य देवताओं में महान पूजनीय बनता है। और लिंग भी पूजनीय बनता है या नहीं बनता है? लिंग भी पूजनीय बनता है। इसलिए बोला छोटा रूप याद नहीं आता है तो क्या करो, बड़े रूप को याद। बेचारा शिव बापू कितना मजबूर, खुद रास्ता बताता है। तुम छोटे रूप को याद नहीं कर सकते, 80 साल हो गए, रोज कहता हूं अमृत वेले याद करो, कहता हूं ना, कितना याद करते हैं? कितनी देर निराकार ज्योति बिंदु की याद में टिकते हो? और बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, सवाल पैदा होता है निरंतर क्यों नहीं याद कर सकते? कोई कारण होगा ना, कोई कारण नहीं है? त्रेसठ जन्म, इतने ढेर के ढेर जन्म हो गए। 63 जन्मों में कौन याद आता रहा ज्यादा है? साकार याद आते रहे। और 63 जन्मों में जितनी बार भी मृत्यु हुई, अंत समय में कौन याद आया है? साकार याद आया। स्त्री का साकार रूप है तो पुरुष का साकार रूप याद आया, पुरुष का साकार रूप है 63 जन्मों में तो स्त्री का रूप याद आया, तो आदत क्या पड़ गई है? साकार को याद करने की पक्की पक्की 100% आदत पड़ गई। तो बड़े फंस गए, अब क्या करें है? निराकार को याद करने का अभ्यास करें 80 साल के बाद। 80 साल में नहीं कर पाए है? नहीं कर पाए ना है? नहीं कर पाए। और जब बाबा शिव बाप ने ब्रह्मा के मुख से वाणी में ही क्लियर कर दिया कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, किन बच्चों को? किन बच्चों को हैं? अरे बच्चे तो नंबर बार पैदा होते हैं। आप कब पैदा हुए? अरे वो तो परिचय, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, मेरा बाप ज्योति बिंदु, वो तो बेसिक में ही परिचय मिल गया, बेसिक नॉलेज मिल गई। अब एडवांस नॉलेज में, ऊंची नॉलेज में रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा रियलाइज करूं, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मुझे आत्मा पार्टधारी का अव्वल नंबर पार्ट क्या है, अरे अनेक जन्म लिए हैं तो अनेक जन्मों में कोई बढ़िया से बढ़िया पार्ट तो बजाया होगा हैं? जो दुनिया की नजरों में आया हो। तो मैं आत्मा ज्योति बिंदु कौन सा विशेष पार्टधारी हूं इस रंगमंच पर? जब ये पता लग जाएगा तो जो साधारण साधारण पार्ट है, क्योंकि पहले हर आत्मा सत्व प्रधान होती है, है? अपने जन्मों में 100% सात्विक जन्म लेने वाली विशेष आत्मा होती है। इसका पता लग जाएगा तो बाद में उतरती कला के जो और जन्म हैं वो भी पता लगेंगे। अच्छा चलो ये पता न लगे तो हम बीज रूप आत्माओं को जो रुद्रमाला के मणके कहे जाते हैं, सारे संसार के हर धर्म के बीज कहे जाते हैं। कोई बीज में किस धर्म का छिलका, कोई बीज में किस धर्म का छिलका, सब में देह अभिमान का छिलका अलग अलग प्रकार का चढ़ा हुआ है या एक ही प्रकार का छिलका है? अलग अलग प्रकार का छिलका है। तो वो देवान का छिलका कोई में तो जल्दी उतर जाएगा, है? उतरेगा या नहीं? अपने आप अपने पुरुषार्थ से उतर जाएगा या कोई को देखें, जाने, पहचाने और उसको फॉलो करें? जो बाबा ब्रह्मा मुख से मुरली में कहते हैं फॉलो फादर, तो फादर को जिन्होंने पहचाना होगा वो रिगार्ड देंगे, एड़ी से चोटी की ताकत लगाकर सहयोग देंगे, तन से भी पूरा सहयोग देंगे, रिंचक मात्र भी सिवाय बाप का परिचय देने के। अपने लास्ट जन्म के संबंधियों को कोई सहयोग नहीं देंगे, धन का भी नहीं, तन का भी नहीं, मन के संकल्पों का भी नहीं। समय का भी नहीं। आज की दुनिया में ज्यादा वैल्यू किस चीज की है? समय भी नहीं देंगे। बाप का परिचय देने के लिए समय देंगे, बाकी और कोई दुनियावी शक्ति का समय नहीं देंगे। सारा समय जिस बाप को पहचाना होगा, उस बाप को सहयोग देंगे, उसके कार्य में महत्व देंगे और बाप को फॉलो करेंगे। भाइयों को फॉलो नहीं करेंगे। और नंबरवार पहचान कर नंबरवार फॉलो करेंगे कि एक जैसा फॉलो करेंगे? उन बच्चों की संख्या कितनी है? अरे अष्टदेव गाए हुए, गीता में भी उन्हें आठ का गायन है। कहते भी हैं दुनिया में आठ दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और चार उनके कोने, वो अष्टदेव आठ दिग्पाल गाए हुए हैं, आठ दिशाओं को पालने वाले। वो आत्माएं इस बात की गहराई पर विचार करेंगी कि 40 साल में तुम बच्चे या 50 साल में तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जावेंगे, आत्मा बन जावेगी या शरीर बन जावेगी? शरीर के लिए तो मुरली में ही बोल दिया ब्रह्मा मुख से, क्या बोल दिया? शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल बनती जाएगी। मन दवाई खाना बंद कर दें है? देह की परवरिश करना बंद कर दें, बंद करने की बात नहीं बताई, लेकिन पांच तत्वों से बनी विनाशी देह और अविनाशी आत्मा में ज्यादा महत्व किसका है? आत्मा का महत्व ज्यादा है। तो जिस आत्मा को पुरुष कहा जाता है, शरीर रूपी पुर या पुरी में शयन करने वाली आराम से, उस आत्मा के अर्थ सब कुछ करना है, ज्यादा से ज्यादा करना है या देह के अर्थ करना है? आत्मा के कल्याण अर्थ करना है, उसे कहते हैं पुरुषार्थ। क्या कहते हैं? पुरुषार्थ। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले चालीस इकतालीस साल के अंदर कितने निकलते हैं, बाकी सब पुरुषार्थ नहीं करते पुरुष अर्थ नहीं करते, देह अर्थ करते हैं और 40 साल और 50 साल तुम बच्चों के लिए बोला या बच्चा बुद्धियों के लिए बोला है, बेसिक प्राइमरी ज्ञान लेने वालों के लिए बोला या एडवांस ज्ञान लेने वालों के लिए बोला? तो एडवांस ज्ञान लेने वालों में 40 साल पूरे हो, क्या कहा, 40 साल पूरे हो तो ब्रह्म वाक्य के आधार पर ब्रह्मा का वाक्य वेद वाक्य कहा जाता है। पत्थर की लकीर है, 40 साल पूरे होने पर कोई एक आत्मा सत्व प्रधान बनेगी या नहीं बनेगी? अब्बल नंबर पुरुषार्थी संसार में साबित होगी या नहीं होगी? पहले पहले 8 के लिए साबित होगी, जिन 8 आत्माओं ने तन से मन से धन से समय संपर्क संबंध की सारी बाजी लगाकर सारी ताकत लगाकर आत्मा के कल्याणार्थ कार्य किया माने पुरुषार्थ किया, वो आत्मा कौन हो सकती है? अरे फिर चुप है, मनुष्य सृष्टि का बाप, उसकी संपन्नता की बात बताई, सत्व प्रधान बन जाएगा, और नंबर बार की लिस्ट में होंगे है? अरे नंबर बार की लिस्ट में होंगे और एक के अलावा है,
उस एक का प्रत्यक्षता रूपी जन्म जैसे बच्चा गर्भ में प्रवेश होता है तब प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं मनाया जाता, बाहर आता है दुनिया में, दुनिया की नजरों में प्रत्यक्ष होता है जन्म मनाया जाता है, माना जाता है। जब गर्भ में माता के अंदर पेट में प्रवेश होता है तब जन्म माना जाता है। तो बताओ
वेद में वेद बाप का जो वसुदैव कुटुंबकम है, उस कुटुंब में जन्मदाता सारी मनुष्य सृष्टि का बोल रचयिता बाप का प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब हुआ? है? है? 70? चलो 77 संपूर्णता वर्ष सही, लेकिन उसे मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता रूपी जन्म कहेंगे या मनुष्य सृष्टि के बाप की आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म कहेंगे? हाँ? किसका जन्म? आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। आत्मा शरीर में पहचानी जाए, शरीर में होगी तब पक्का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है या बिना शरीर के प्रत्यक्षता रूपी जन्म? है? शरीर पहचाना जाए, जो शरीर ज्ञानी कहे, अखूट ज्ञान का भंडारी कहे, चलो बाप समान ही सही, या संपूर्ण योगी भी कहे, ज्ञानी और योगी दोनों कहें या सिर्फ ज्ञानी कहें या सिर्फ योगी कहें, क्या कहें? हैं? ज्ञानी और योगी वो एक आत्मा जिसका प्रत्यक्षता वर्ष बेसिक ब्राह्मणों ने भी मनाया और एडवांस ब्राह्मणों ने भी मान लिया, वो आत्मा भारतीय परंपरा में शिवलिंग के रूप में मानी जाती है, पूजी जाती है, सोमनाथ मंदिर में जिसकी यादगार थी। वो आत्मा शरीर के साथ संपन्न पुरुषार्थी या बिना शरीर के संपन्न पुरुषार्थी? दो दो बातें कर दी, शरीर के साथ संपन्न पुरुषार्थी। अरे शरीर के लिए तो बोल दिया, शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल होती जावेगी। तो
शरीर
साधन है, वो तो सबका शरीर साधन है। ऐसा यहाँ कौन बैठा हुआ है जिसका शरीर साधन नहीं है? शरीर साधन है, शरीर रूपी साधन के द्वारा साधना कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य सृष्टि का बाप है ना? तो पतितों का बाप है या नहीं है? और पतित आत्मा का शरीर भी सब पुरुष मात्रों के बीच में पतित ही होना चाहिए या पावन होना चाहिए? तो पति शरीर में जास्ती बीमारियां भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और फिर उस शरीर की सबसे जास्ती परवरिश भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। इसलिए बाबा ने बोल दिया, वो शिव बाप ने बोल दिया, क्या बोला है? अरे संबंध में कुछ बोला है? बोला मैं कैसे शरीर रूपी रथ लेता हूँ, कैसा है? मुकर्रर रथ लेता हूँ, आदि में भी होता, मध्य में भी होता और अंत में भी रहता, वो तो होता। लेकिन ये भी बोला कि भाग्यशाली रथ लेता हूँ। कैसा रथ है? भाग्यशाली। किस अर्थ में है? अरे गली गली की खाक छानता फिरे, वो भाग्यशाली रथ है? उसको भाग्यशाली कहेंगे? अरे चुप, भाग्यशाली कहेंगे? गली गली की धूल चाटने वाले को भाग्यशाली कहेंगे? नहीं कहेंगे। कहेंगे फौरन पलट जाते। अरे जितने भी धर्म पिताए हुए, उन्होंने धर्म के धक्के खाए या नहीं खाए? कोई धर्म पिता का नाम बताओ जिसने इस दुनिया में आकर के धर्म के धक्के न खाए हों। तो जो ग्रेट फादर्स कहे जाने वाले धर्म पिताओं का भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर।
मनुष्यात्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, आत्मा को कहा जाता है, आत्मा को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, या मनुष्य को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है? शिव बाप कहते हैं मेरा तो तुम बच्चों के साथ एक ही संबंध है, बाप और बच्चा। मैं जब किसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूँ तो मेरे सर्व संबंध बनते हैं, नहीं तो मैं सिर्फ बाप हूं, ग्रैंड फादर भी नहीं। क्या ग्रैंड फादर भी एक संबंध है या नहीं? बाबा ये भी संबंध है, बाप का बाप बाबा कहा जाता है। तो शिव बाप ग्रैंड फादर नहीं है, ग्रैंड फादर कौन हुआ है? मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, मनुष्य सृष्टि में कोई आत्माओं का ऐसा संगठन भी है जो सर्वोच्च संगठन कहा जाता है। सूर्यवंशी संगठन कहा जाता है। क्या सूर्यवंशी और जो धर्म वंश हैं, इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में वो कोई दाई ओर झुक जाते हैं और कोई बाई ओर के बाम मार्ग में चले जाते हैं। बाम मार्ग माने गंदा मार्ग। बाएं हाथ से क्या करते हैं? गंदगी साफ करते हैं, गंदे काम करते हैं, और दाएं हाथ से दान धर्म अच्छे कार्य करते हैं। तो कोई धर्मवंशी ऐसे हैं सूर्यवंशियों को छोड़कर जो दाई ओर के धर्मों में कन्वर्ट होते, भारतीय धर्मों में कन्वर्ट होते, पवित्रता को विशेष मान्य देते, ब्रह्मचर्य को विशेष मान्यता देते। और कोई धर्म ऐसे हैं जो भारत का विरोध करते हैं, पवित्रता का खंडन करते हैं। एक सूर्यवंशी ही ऐसा धर्म है जो सूर्यवंशी मनुष्य आत्माएं न दाई ओर कन्वर्ट होती जीवन रहते, न बाई ओर कन्वर्ट होती जीवन रहते। ये ही सोने का समय है, फिर कोई टाइम नहीं मिलेगा सोने का, और भाग्य भी ज्यादा बनता है, क्योंकि कुंभकर्ण का वातावरण बनाना अच्छी बात है ना, है ना? है नहीं? अच्छा, तो क्या बात चल रही थी? हाँ, एक धर्म ऐसा भी है जो न दाई ओर के धर्मों में कन्वर्ट होता, भारतीय धर्मों में भी कन्वर्ट नहीं होता, और बाई ओर के विदेशी धर्मों में भी कन्वर्ट नहीं होता। दाई ओर के भारतीय धर्म जरूर हैं, लेकिन विधर्मी हैं। क्या है? विधर्मी हैं, विपरीत धर्म वाले हैं। भलापन को श्रेष्ठ मानते हैं, दुनिया में सबसे जास्ती दान धर्म भी लेते हैं अपन को श्रेष्ठ मानकर, और दुनिया वाले उनको दान देते भी हैं। समझते हैं इनका नारा है अहिंसा परमो धर्म। क्या बोलते हैं? अहिंसा परमो धर्म। और जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो भी उनको बड़ा मान देती है। क्या? भारत के जो अव्वल नंबर भक्त बनते हैं, अव्वल नंबर एक लिंग को मानने वाले हैं, एक लिंग भगवान, दूसरा कोई लिंग भगवान नहीं, वो मानने वाले हैं, वो उनको भगवान का अवतार बता दिया। बोलो, भारत में कितने धर्म हैं? 9 धर्म है आस्तिक और एक नास्तिक। उन नास्तिकों का बाप नहीं आया हुआ है? आया है ना? आया है तब तो कहता है, बाप विदेशी बन करके आए हैं। क्या कहता है? हैं? विदेशी बनकर आए हैं। तो विदेशी बनकर आए हैं तो विदेशी काम भी करते होंगे कि नहीं? नहीं करते? कहते हैं विदेशी बनकर ना आता तो तुम सब धर्म के अलग अलग फॉलो करने वाली आत्माओं से मिल भी नहीं पाता। कोई किस धर्म का बीज, कोई किस धर्म का बीज, कोई किस धर्म का बीज, कोई नास्तिक धर्म के भी बीज हैं, सबसे आकर मिलते। जो बोला फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। मुरली में बोला फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर नहीं हो सकता। सारी दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, यथा राजा तथा प्रजा, सबसे आकर के मिलते हैं, कोई से कम कोई से ज्यादा, कोई से सभी इंद्रियों से मिलते हैं, कोई से जो 11वीं इंद्रिय है, कौन, मन, मन से पूरी पहचान हो जाती है। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है कि नहीं? इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बाहर कोई मनुष्य आत्मा अंत तक रह पाएगी है? नहीं रहेगी। इसमें क्या राज है? इसमें यही राज है कि महामृत्यु के महाविनाश के समय तक 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, उन सब की बुद्धि ऐसे स्थान पर धरी होगी, ऐसे व्यक्तित्व में जुटी होगी, जो व्यक्तित्व कहता रहा मनमना भव। व्यक्तित्व कहता रहा, व्यक्ति की आत्मा कहती रही या अव्यक्त शिव कहता रहा, कौन कहता रहा मनमना भव, मेरे मन में समा जा है? अरे ब्रह्मा के मुख से ये वाक्य बोला गया, मनमना भव, मेरे मन में समा जा। शिव को तो मन है ही नहीं, वो तो सदा मन चैन में रहने वाला है। इस सृष्टि पर पतित दुनिया में, पतित शरीर में, पतित तन में आता है तो भी है? अमन चैन में आत्मा रहती है या दुखी होती है? अमन चैन में रहती है। बाकी मनुष्य आत्माओं की ये बात नहीं हो सकती। माने मनुष्य आत्माओं में कोई मनुष्य आत्मा है जो संगम युग में भी ऐसा पार्ट भी बजाती है कि अमन चैन में नहीं रह पाती? सही बात है ना? अरे कोई मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जो संगम युग में सदा काल अमन चैन में रहती हो। माना कोई सबसे जास्ती दुख में रहने वाली भी आत्मा होगी। दुनिया की सबसे जास्ती दुख भोगने वाली भी आत्मा होगी या नहीं होगी? किसका प्रूफ? अरे कोई प्रूफ है या नहीं है? बाबा तो कहते हैं तुम बच्चे बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हो, बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मान ही नहीं सकते। तो जो आत्मा सबसे दुखी होती है इस संगम युग में, वो शिव नहीं है क्या? हाँ? शिव नहीं है, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है सदा मन चैन में रहने वाली आत्मा, वो मुकर्रर रथधारी आत्मा जिसे रथी कहा जाता है, सारथी नहीं, क्या कहा जाता है? रथी, रथ वाली आत्मा, वो सबसे जास्ती इस दुनिया में दुखी होती है, खासकर संगम युग में। मुरली में प्रूफ दिया, क्या प्रूफ दिया? दुनिया भी उसकी जीवन कहानी को सुनती है गुरुओं से, और गुरु लोग सुनाते हैं, और गुजरात में तो बड़े प्रसिद्ध हुए हैं रामचंद्र डोंगरे। अरे नाम सुना कि नहीं सुना? हैं? लाखों लाख पब्लिक इकट्ठी होती थी और वो राम कथा सुनाते थे, और खुद भी जार जार रोते जाते थे और पब्लिक को भी जार जार रोते। बताओ वो दुखी आत्मा की यादगार है या नहीं है? आज भी है, है। तो शिव बाप ने ब्रह्मा के मुख से ये वाक्य बोला है, जो सच्चाई है वो ही बोलेगा या झूठी बात बोलेगा? क्या महावाक्य है? शिव बाबा शब्द नहीं बोला, भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया। किसको? भगवान को। अरे ये क्या बात हो गई? धनवान को नहीं, हा? क्या कहा? धनवान की बात नहीं कही, ना हद का धनवान और ना बेहद का धनवान। किसकी बात कही? भगवान। अरे जो निराकार आत्माओं का बाप, निराकार ज्योति बिंदु है, वो भगवान नहीं है, है? अरे अरे ऐसी खास बात में चुप रह गए? वो भगवान नहीं है, ब्रह्मा कुमारियां किसी एक को पकड़ लेंगी जोर से पिटाई करेंगी। वो निराकार आत्माओं का निराकार बाप धनवान है या भगवान है? है धनवान है, ये तो ठीक है, अखूट धन का स्वामी है, हद का नहीं बेहद धन का स्वामी है, लेकिन वो भगवान नहीं। ये क्या बात हुई? ऐसी बड़ी बात तो कोई नास्तिक ही कहेगा। सारी दुनिया के धर्म पिताएं जो भी हिस्ट्री में हुए वो सब निराकार को भगवान मानते हैं, है? ये कौन निकल रहा है जो ये साबित कर रहा है कि निराकार शिव ज्योति बिंदु, निराकार आत्माओं का बाप भगवान नहीं है, धनवान तो है और बेहद का धनवान है? लेकिन भगवान नहीं।
अरे
चुप क्यों बैठ गए? ऐसी नास्तिक पने की बात मानने के लिए चुप बैठना है क्या? मौनम स्वीकृत लक्षणम, मौन है माने स्वीकार कर लिया क्या कि निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप निराकार शिव ज्योति बिंदु वो भगवान नहीं है, क्या है? है भगवान है। धनवान तो है बेहद का लेकिन भगवान नहीं है। फिर बताना पड़ेगा कौन है भगवान और कैसे है भगवान। और उसकी यादगार क्या है? यादगार भी है क्या? प्रैक्टिकल कर्म की यादगार है क्या? हवा में बोले जाने वाली बात नहीं है क्या? हवा में बोली जाने वाली बात जो समझाते हैं 32 किरणों वाले चित्र के ऊपर क्या है? क्या समझाते हैं? अरे हाँ वो एवर प्योर है। क्या समझाते हैं? वो निराकार आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु क्या है? एवर प्योर।
अरे
नियम तो ये है जो एवर प्योर होगा वो एवर इम्प्योर भी होगा या नहीं होगा है? जो पतितम होगा वो पावनतम भी होगा या नहीं होगा? जो पूज्य होगा वो पुजारी भी होगा या नहीं होगा? इसलिए बताया ये कास्केट के क्षेत्र का हो या 32 किरणों वाला शिवलिंग का चित्र कहो, जिनके कैलेंडर तो बन रहे हैं लेकिन उम्मीद तो नहीं है। बॉम्बे वालों में ये उम्मीद नहीं है क्या है कि टाइम पर ये टिन के कैलेंडर भी पहुंचाए देंगे
क्या?
कपड़े के कैलेंडर नहीं कहा क्या? कहा टिन के कैलेंडर क्यों कहा? अरे कपड़ा ज्यादा आवाज करता है कि टिन ज्यादा आवाज करता है? तो आवाज करने वाले भी कैलेंडर चैतन्य नहीं पहुंचाएंगे ये जो ये बात बता सके। ये जो कास्केट यादगार है जिसका सात्विक यादगार सोमनाथ मंदिर में था, जो ढेर के ढेर मंदिर आज भी गांव गांव में शहर शहर में बने हुए हैं, वो कौन है? उसकी बायोग्राफी बताओ। जिसके लिए बोला कि वो ही भगवान है, लेकिन अरे भगवान का टाइटल उसको जितना रुलाया है भगवान को इतना और किसी को नहीं रुलाया। ये क्या बात होगी, ये बड़ा भाग्यवान भी है। रथ कैसा है, है? भाग्यशाली रथ है। उस रथ की जितनी परवरिश होती है और जितने लोग परवरिश करते हैं उतनी परवरिश दुनिया में किसी भी व्यक्ति की नहीं सुनी गई, किसी की भी इतनी हिस्ट्री नहीं है। निजाम बादशाह को भी 500 रानियां थी सेवा करने वाली, लेकिन ये जो भगवान कहा जाता है उसको शास्त्रों में कितनी रानियां दिखाई गई, हाँ 16,000। अरे बाप रे, इतनी तन से सेवा करने वाली, इतना धन अर्पण करने वाली, इतना मन के संकल्प, जिसे भारत में कहा जाता है, माना भी जाता है पति परमेश्वर, और वो जो गहरे से गहरा संबंध है, जो संबंध इंद्रियों के द्वारा बहुत गुप्त में जोड़ा जाता है, गुप्त में जोड़ा जाता है या चौराहे पर जोड़ा जाता है, है? गुप्त में जोड़ा जाता है। बाप दादा ने भी बोला इसलिए ही मिलन पर्दे के पीछे अच्छा होता है, क्या ऐसा संबंधी जो शास्त्रों में काम के आधार पर नाम पड़ा है गोप और गोपियां, जिसका अर्थ है गुप्त संबंध जोड़ने वाले, गोपियां हैं तो उन्होंने भी गुप्त संबंध जोड़ा है। 16,000 गाय हुई है और गोप हैं तो उनको भी पता है, जिन गोपों ने या तो बाप के रूप में अपनी बेटी अर्पण की है या तो भाई के रूप में अपनी बहन अर्पण की है या तो मामा के रूप में अपनी भांजी अर्पण की है या तो चाचा के रूप में अपनी भतीजी अर्पण की है, उस भगवान को ऐसे ही और भी अनेक संबंध है, वो जानते हैं पुरुष रूप में। क्या कि ये 16,000 गोप और गोपियां कौन कौन हैं, कौन कौन ने वो गुप्त संबंध जोड़ा है, जिनके अंतिम पुरुषार्थ का प्राप्ति का रूप क्या होता है, उन गोप गोपियों के अंतिम पुरुषार्थ की प्रारब्ध क्या होती है, प्राप्ति क्या होती है, जो गाई हुई है शास्त्रों में अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये अतीन्द्रिय सुख जो 10 इंद्रियों के प्रैक्टिकल संबंध से परे की बौद्धिक स्थिति है, उस स्थिति में पहुंचने वाले ये 16,000 गोप गोपियां भगवान का संग का रंग लेकर के उस स्टेज पर पहुंचते हैं जो अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है। जिस अतीन्द्रिय सुख की रचना सतयुग के आदि राधा कृष्ण माने गए हैं, जो कीर्तन में बोलते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, वही नारायण है वही कृष्ण। मनुष्य शक्ति का पहला पत्ता वो रचना है या रचयिता है सतयुगी मनुष्य शक्ति का है रचना है? राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया है, रचना है नीचे है, रचयिता लक्ष्मी नारायण ऊपर खड़े हुए हैं। जो ऊपर खड़े हुए रचयिता अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले हैं या इंद्रियों का सुख भोगने वाले हैं? है अतीन्द्रिय सुख भोगने वो ऊंचे से ऊंची पीढ़ी है जो संगम युग में बनती है, जिसे कहते हैं स्वर्णिम संगम युग। स्वर्ग से सुंदर संगम युग है। भगवान का स्पेशल युग है जहां ऐसी पीढ़ी तैयार होती है जो अतीन्द्रिय सुख से बच्चे पैदा करती है। 9 इंद्रियों 10 इंद्रियों से परे की स्टेज, मन बुद्धि की स्टेज, जिस स्टेज में इंद्रियातीत इंद्रियों से अतीत परे की स्टेज में चली जाती है आत्मा। जो स्टेज भोगने वाला सर्वोपरि व्यक्तित्व शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, हीरो पाटधारी के रूप में पूजा जाता है, उसका परिचय देने के लिए बोला कि कास्केट में उसका परिचय दिया हुआ है। जो बेसिक नॉलेज लेने वाले बच्चा बुद्धि बच्चे हैं वो जड़ चित्रों पर समझेंगे और समझाएंगे, और जो एडवांस नॉलेज लेने वाले बाप समान बच्चे हैं, रुद्रमाला के बच्चे कहे जाते हैं, असल सूर्यवंशी बच्चे हैं, वो जड़ चित्र पर समझाएंगे या चैतन्य चित्र को समझेंगे और समझाएंगे? है चैतन्य चित्र पर समझेंगे और चैतन्य चित्र पर समझाएंगे, पहचानेंगे तब समझाएंगे या बिना पहचाने समझाएंगे? कब पहचानेंगे? आज या कल या कभी भी भविष्य में पहचान लेंगे? है आज पहचानेंगे? वाह भाई, ये तो बात बताने वाला कोई मुहमुया मिट्ठू आया है? है? ब्रह्मा मुख से क्या बोला शिव बाप ने? शिव बाबा है दुनिया का सबसे बड़ा मुहमुया मिट्ठू, बोला कि नहीं? है? नहीं बोला? अरे गीता में क्या बोला? मैं वृक्षों में ये हूँ, मैं नदियों में वो हूँ, मैं सिद्धों में वो हूँ, ये मुहमिया मिट्ठू नहीं है? है? है या नहीं? तो ये भगवान है या अखूट धनवान है? कौन है? ओम शांति।